जिस रात अहमद रजा के घर की तलाशी ले रहा था, यह पैकेट बंद अलमारी के अंदर से मिला। 110 मिलियन तुमान अहमद रजा के अकाउंट में है और 17 मिलियन का ट्रैवल चेक। इस पैकेट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, मगर आप मुझे बताएं कि अहमद रजा के कर्जुल हसना अकाउंट में 110 मिलियन कहां से आए? इतना पैसा, एक अनजान अकाउंट, एक गुमनाम मस्जिद के नाम,
कहां से लाके डाला? हकीकत में इसका मतलब क्या है? ये सब क्या बताते हैं?
किस बात की तरफ इशारा करते हैं? अहमद रजा की लग्जिश की तरफ? मैंने इस पैकेट के बारे में किसी को नहीं बताया है ताकि अहमद रजा के साथ और बुरा ना हो, और मैं जानता हूं कि इस बारे में पुलिस को भी कुछ पता नहीं है। मैंने माना कि यह अकाउंट एक बेनाम और निशान मस्जिद के नाम है। अब जबकि आपको दिखाया जो कि उसकी बीवी है, कि जिसका बुरा नहीं चाहती, कि मुंह नहीं खोलेंगी और शोर नहीं मचाएंगी कि जिसकी वजह से उसके साथ और बुरा ना हो, मगर आप बताएं क्या ये सही है?
जब मैं कह रही हूं कि फातिहा खानी मैं करूंगी तो उसका खर्चा भी मैं ही करूंगी,
तुम इतने पैसे कहां से लाओगी?
क्या हुआ? क्या तुम रुकना नहीं चाहती थी बेटी?
रुकूंगी, मैं रात को जब पैसा लेकर आऊंगी तब रुकूंगी।
रुख, यहां क्या कर रहा है? मरवा, रुक, तो काम है तुझसे। रुक, यहां क्या कर रहा है बता। रुक तो जरा, आ
जल्दी ट्रांसफर करिए इमरजेंसी में।
देखो, बिला वजह हल्ला ना करो, ये मत सोचना कि यहां भर्ती करके मुझे रोक सकोगी। चार टाका लगा दो ताकि खून बंद हो जाए, मुझे जाना होगा। ये वही था जो शाइस्ता के घर पर था और बाबक ने उसका कॉलर पकड़ा था। मुझे देखना होगा कि मेरे और नरगिस जान के घर पर ये क्यों था। नरगिस जान तो याद होगी ना, नरगिस जान तो याद होगी तुमको, नरगिस जान तो याद।
सलाम।
सलाम, कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दी, कहाँ हो आजकल?
मैंने तुम्हें तकलीफ दी।
अरे तकलीफ की क्या बात है, कहो कैसे आना हुआ?
वो दो लाख तुमान है जो तुम मुझे दे सको।
तुम्हारी कुर्बान जाऊं, तुम्हें तो मेरी हालत का अंदाजा है ही।
हाँ, मैं जानती हूं,
तमाम खर्चे लगे रहते हैं, फिर स्कूल की फीस वगैरह। कसम से मैं खुद लाख तुमान के लिए मजबूर हूँ। अरे तुम तो जानती हो कोई आमदनी नहीं है, हजारों परेशानियाँ हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं चाहकर भी नहीं दे सकती, बहुत शर्मिंदा हूँ।
अब तुम ठीक हो?
सारा, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहती कि मेरा बहनोई मेरे बाबा की फातिहा खानी के लिए पैसा खर्च करे। जिन जिन लोगों को पहचानती थी उनके पास पैसा नहीं है, या जिनके पास है वो देना नहीं चाहते। देख रहे हो, सब पैसों का खेल है। मुझे क्या करना है मैं खुद भी नहीं जानती। बस बाबा की फातिहा खानी के लिए ऐसे पैसे की ज़रूरत है जिससे उनकी रूह न तड़पे और उस पैसे को हवा न उड़ा ले जाए। मैंने माँ से वादा किया है कि मैं रात को खाने पर आऊँगी अकेले, माँ बेटी दोनों एक साथ। मैंने कहा था कि मैं पैसा लेकर आऊँगी, पर इंतज़ाम नहीं हो सका।
तुमको तुम्हारे कर्ज के बारे में क्यों नहीं मालूम? क्या चोरी का पेशा जारी रखना चाहती हूँ?
मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बाबा की फातिहा खानी करूँ, बस बस अभी यही सोच और फिक्र है मेरी।
जाओ अपनी माँ के पास, बता दो कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है, कल सुबह बंदोबस्त हो जाएगा। ऐसा पैसा जो तुम्हारे बाबा की रूह को नहीं तड़ पाएगा।
आ,
तुम कितना सो रही हो बेटी?
बस का टिकट ले लिया है, आप चले जाएं। ट्रेन का टिकट नहीं मिला। पहले से तय था कि आपको बस से जाना है।
शायद मैं भी आ जाऊं, शायद ना भी आऊं,
रुकूं या ना। सब कुछ छोड़े, अपने दिए हुए वादे का क्या करूं? नरगिस, यही नाम था ना?
ये नरगिस कौन है बेटी? तुमको तो बुखार है, तुम्हारे होंठ लाल हो रहे हैं।
ये शर्मिंदगी की वजह से है डैड, मेरे सर पर एक बोझ है, दहकती हुई आग।
110 मिलियन तुमान,
ना मालूम अकाउंट, बैंक कॉपी,
जाना पहचाना नाम।
अहमद रजा, मैं क्या करूं? पुलिस को जाकर क्या बताऊं? अपने हाथ उठाकर बोलूं कि मैं हार गई? बोलूं कि मेरे शौहर ने बात छिपाई, मेरे शौहर के पास अजीबोगरीब अकाउंट है? अपने पेट में पल रहे बच्चे का क्या करूं? क्या करूं उस पल रहे बच्चे का?
मतलब इन सब बातों का मतलब है, पुलिस को क्या बताऊं?
निशानी बुखार से जल रही है। हाशिम खान जाओ, डॉक्टर को बुला लाओ, जाओ जल्दी। लड़की, एक चश्मे पानी, ठंडा पानी, नमक का पानी, जल्दी जाओ। जारी रखे और दवा भी चलती रहे। पेट में बच्चा है और बुखार इनके लिए खतरनाक है। मोजे का इंतजार ना करें, तबीयत ठीक नहीं हुई तो अस्पताल ले जाएं।
तकलीफ का शुक्रिया।
लाइए, आप यहीं रुकिए।
इसका पैर धोना पड़ेगा और दुआ जो कि मेरा काम है।
जाती हूं और एक फोन करके आती हूं।
हेलो।
हेलो फरजा,
मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, यानी थोड़े से थोड़ा ज्यादा।
ठीक है, जरूर।
कौन था?
कोई नहीं, ऑफिस से था। आया था बैंक का कार्ड उठाने, ये सब गिर गया।
बैंक कार्ड किस लिए चाहिए था?
कुछ नहीं,
फोन पर सारा थी, पैसा मांग रही थी।
नहीं,
पैसा मांग रही थी। ये कि अपनी बहन की मदद करो, इसमें कोई बुराई नहीं। असल में बुरा ये है कि उसने मेरे साथ बुरा सलूक किया, इस घर की 2 दिन की दुल्हन को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। 2 दिन की दुल्हन के आईने को, जो कि मैं हूं, वो तय करना चाहती थी कि कहां रखा जाए कहां ना रखा जाए। बुराई ये है कि किसी कमजोर को सताना उसको बुरा नहीं लगता। बुराई ये है कि तुम अपनी बीवी और बहन के दरमियान फर्ज ना निभा सके। वो तुम्हारी बहन है, जरूर उसकी मदद करो। कम से कम इस एक काम में तो नाकाम मत बनो।
चंद रोज पहले ही एक अजीबोगरीब तरह का कार्ड उसके पास आया था, बेनाम और बेपता।
हमारी पूरी जिंदगी राज के घेरे में आ गई है। मेरी बहन के लिए कब्र खोदी जाती है और डैड के लिए शादी का कार्ड आता है, और अब रोया और कावे के मसले ने सुबह से मेरे जहन को और भी उलझा दिया है।
कौन सा मसला?
मालूम नहीं, आज सुबह रोया कावे के बारे में पूछ रही थी कावे के बारे में तुम्हारी क्या राय है। मेरी समझ में नहीं आया कि उसका मकसद क्या था। ये एक मजाक ही तो है,
इसका क्या मतलब हुआ? यानी एक तजवीज, यानी एक चाहत, यानी मुश्किल खड़ी होना। वही मुश्किल जो तुम्हारी थी और अभी भी है तुम्हारी शादी को लेकर।
अब नए हंगामे झेलने की ताकत नहीं है, बहुत थक गया हूँ समसामी अंकल, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता नहीं कि मैं माँ के गम में सोगवार हूँ, ऐसा लगता नहीं कि इतनी फुर्सत है कि उनके गम में जी भर के रो सकूँ, ऐसा लगता नहीं कि
बाबू कहाँ है?
सलाम।
सलाम, तुम ठीक हो?
हाँ मैं ठीक हूँ।
ठीक ठाक से तुम्हारी माँ चली गई?
हाँ चली गई, तुम्हारे डैड को तुमसे काम है, बावर्ची खाने में बैठे हैं वो।
आप ठीक हैं?
ठीक होना कैसा होता है?
अबे यहाँ क्यों बैठे हैं?
मैं यहाँ बहुत ज्यादा बैठा करता था, क्या तुम भूल गए? मैं यहाँ घंटों बैठा रहता और नाहिद को काम करता हुआ देखता रहता था। कभी उसने इस बात की इजाजत नहीं दी कि किसी को इस घर में काम करने और खाना पकाने के लिए रखा जाए। कहा करती थी मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं कहा करता था औरत का मतलब है बावर्ची खाना। वो हंसा करती और कहती मर्द यानी सिर्फ पेट। काबे को फोन करके बोलो ऑफिस जाए और मेरे लॉकर से कागजात निकाल कर लेता है। ऑफिस की चाबी बैंक ऑफिसर के हवाले कर दे। अब मेरे सर से पानी ऊपर उठ चुका है बच्चे।
कावे को क्यों बोलूं? खुद ही चला जाता।
तुम मालिक के बेटे हो मगर मालिक होने का मतलब नहीं समझते। कावे को बोलो जाने को।
कौन?
सलाम।
सलाम।
बात करने के लिए तैयार हो तो थोड़ी देर बात करें। अच्छा तो
बोलो।
मरमूज।
क्या मरमूज?
कावे के सिलसिले में जो कुछ पूछना चाहती थी वो मरमूज है।
तुमने तो कहा था कि लोगों को एक जुमले में नहीं समझा जा सकता। क्या हुआ कि एक ही जुमले में सब कुछ कह डाला?
ये मरमूज जो मैंने कहा उसकी सिफत नहीं है, उसका तर्ज अमल है।
तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मरमूज है?
हमेशा से ही ऐसा था, बचपन से लेकर आज तक। ना तो उसकी खुशी का पता चलता है ना ही दुख का। कभी तुम ये नहीं समझ सकी कि कावे किस चीज से राजी है या नहीं है। अलबत्ता ये सारी बातें जो कि बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि कावे बुरा आदमी है। भाई बहन के रिश्तों की वजह से कुछ बातें ऐसी थी जो मैं नहीं कह पा रहा था, अच्छा नहीं लगता था। मगर अभी मैं तुम्हारी तरफ से बात करना चाहता हूं, तुम मेरी बहन की तरफ से, जिसकी शर्मा भाई के साथ खुलकर बात करने की इजाजत नहीं देती थी। तुम कभी भी मरमूज लड़की ना थी, कभी भी। तुम्हारा दिल, तुम्हारी समझ एक खुली किताब थी, बचपन से लेकर आज तक। भाइयों की बहनों के सिलसिले में छठीस हमेशा बेदार रहती है। तुम हमेशा से ही कावे को पसंद करती आई हो, बचपन से लेकर अब तक। उस बचपन की लड़ाई और कुश्ती में जब हम लोग डैड की नजरों से बचकर और फ्लोर आंटी से पोशीदा रखकर एक दूसरे से उलझते तो तुम हमेशा ये पसंद करती कि मैं हारूं। सिर्फ ना मत कहना वरना मेरे एहसास को झटका लगेगा, यानी मेरी तशखीस गलत हो जाएगी। कि ये कि तुम हमेशा कावे को चाहती थी।
तुम्हारी हार पर मैं खुश नहीं हुआ करती थी, कावे के ना हारने पर खुशी होती थी।
तुमसे शादी की तजवीज पेश की है?
हाँ।
तुमको मालूम है ना कि डैड उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। जानती हो?
हाँ जानती हूं, तुम्हारी ही तरह, जो कि तुम भी जानते थे।
मैं जानता था, मेरे डैड, उनके कवानीन, उनकी राय सब मैं जानता था। ये सभी नशेबो खराज की राय जानता था। मगर रोया, मैं एक और चीज अच्छी तरह जानता था। मैं फातिमा को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जानती हो कि उसका क्या मतलब हुआ? यानी मुकम्मल यकीन।
अगर बात पूरे यकीन की है तो कावे तो बरसों से हमारे साथ रहता आया है, उसके सिलसिले में मेरी पहचान मुकम्मल है। मुकम्मल है, इसलिए कह रही हूँ कि अच्छा आदमी है।
रोया, अभी हमारी जिंदगी पूरी तरह से उलझी हुई है। डैड, माँ की मौत, वो वाकया जो हर दिन किसी न किसी सूरत में अंजाम पाता है। अभी डैड से जंग करने का मौका नहीं है।
मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना है।
मगर ये होगा, तुम्हारा और कावे का मामला झगड़ा वजूद में लाएगा।
पहले भी कहा था, मैं नशा छोड़ने की हालत में हूँ। मैं नशेड़ी नहीं हूँ, मैं उन जैसा दिखता हूँ जनाब। थोड़ा वक्त लगेगा चेहरा असली हालत आने में।
तुम्हारा चेहरा अपनी जगह पर है, खुद ही ये हालत बना रखी है। अच्छी तरह सुनो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब्बास फरहानी नाम का एक आदमी तुम्हारे वीडियो क्लब आता है और फिल्म लेकर चला जाता है, फिर तुम उसका शनाख्ती कार्ड उड़ा लेते हो। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, सारी चीजें पहले ही बहुत उलझी हुई हैं। तुम लफंगे उनको मेरे लिए और मत उलझाओ। उस शनाख्ती कार्ड के जरिए 8 अरब रुपया इधर से उधर हुआ है, जो मार्केट में सोने की शक्ल में तब्दील होकर आ गया है। अभी वो पैसा सबके हाथ से बाहर है। यहां तक समझे तो बोलो, समझा जनाब?
जी हाँ, समझा जनाब।
शनाख्ती कार्ड किसको बेचा?
अफसर, मोहसिन अफसर, जाली काम करता है।
इस मोहसिन अफसर को कहाँ ढूंढा जा सकता है?
नहीं जानता, खुदा कसम।
अहमद रजा बाबाई, ये नाम कभी तुम्हारे कानों में पड़ा है?
नहीं।
जनाब मर्जबान, काउंटर पर तशरीफ लाइए। जनाब मर्जबान, काउंटर पर तशरीफ लाइए।
तुम ठीक हो?
डैड कहाँ है?
गए, पुलिस के पास गए, कह रहे थे अगर खुजस्ता ठीक होती तो वो भी यही काम करती। पुलिस के पास जाती और ये राज खोल कर रख देती। कह रहे थे खुजस्ता और उसकी खौफ खुदा की हालत मेरी जैसी है, बिल्कुल एक सेब के दो टुकड़ों की तरह, जैसे कि मैं उसका बाप हूं। कह रहे थे खुदा ने मुझे और मेरी बेटी को एक जमाने के बाद इम्तिहान और आजमाइश के लिए इंतखाब किया है। मुझ में और मेरी बेटी में इतनी सलाहियत है कि इस बोझ को बर्दाश्त कर सकें। ये कहा और चले गए। सो जाओ अजीजम।
Thank you.